لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سورہ مبارکہ انعام کی وہ آیت جس پر کل رات کی مجلس ختم ہوئی، اور اسی سیکوینس میں سورہ مبارکہ نور. سورہ مبارکہ انعام: فقل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آؤ اتلو، میں تلاوت کروں ان چیزوں کی جو اللہ نے تم پر حرام کی. اللہ نے حرام کیا ہے لا تقرب الفواحش، بے حیائی، شیم فل ایکٹس، انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز، بے شرمی اور بے غیرتی کے کام، اس کے قریب نہ جانا. یہ اللہ جو حرام کر رہا ہے ان کھلے ہوئے بے حیائی کے کاموں کو. اور سورہ نور: لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، فانہ، تو یہ شیطان، یأمر بالفحشاء والمنکر، تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا. اللہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر رہا، شیطان بے حیائی کے کاموں کا حکم دے رہا. اس دنیا میں دو شریعتیں ہیں، اور دونوں شریعتیں پیرلل چل رہی ہیں. ایک اللہ کے نازل کی بھی شریعت ہے، اور ایک شیطان شریعت یہاں لے کے آیا. اللہ کی شریعت میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام. شیطان کی شریعت میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام. دیکھیں، لفظ امر بالمعروف اسلام کے ٹرم ہے، لیکن یہاں شیطان کے لیے استعمال ہوا. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یعنی شیطان کی نگاہ میں بے حیائی کا کام بالمعروف اچھا کام ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ دنیا میں دو شریعتیں، اس میں ایک پوری حدیث بھی ہمارے پاس ہے. سید نعمت اللہ جزائری، ہمارے بہت مشہور، مرجعیت یا اجتہاد کی طرف نہیں، وہ محدث ہیں. اب یہ مختلف برانچز ہیں اسلامی علوم کی، مفسر الگ ہے، محدث الگ ہے، فقی یا مجتہد یا مرجع الگ، مورخ ہسٹری کا علم رکھنے والا الگ. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے میڈیکل سائنس میں میڈیکل سائنس میں جی پی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جی پی کی ایک لیمٹ ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ اس کو بولنے کی رضا بھی نہیں. ہمارے ہاں لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں. ممبر پہ آنے والے ہر اسپیکر سے وہ یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اور بعض اسپیکر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کے مسئلے بھی بتائیں گے، چاہے ان کو قرآن پہ اتنی کمانڈ نہ ہو. وہ حدیث کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ فقہ کے اندر بھی انٹرفیئرنس کریں گے. فقہ جو ہے نا، یہ بہت ہی اسپیشلائز قسم کا ایک سبجیکٹ. لیکن اگر میں اس پہ دو جملے اور کہہ گیا تو پھر مرجعیت کی طرف ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ مجھے इस वीक डे की मजलिस में नहीं जाना था। तो अब सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी मुहद्दिस है, अल्लामा मजलिसी के शागिर्द और बहुत ही क्लोज, बल्कि अल्लामा का जो बहुत ही एक मास्टरपीस वर्क है बिहारुल अनवार, तो इतना बड़ा काम जब होता है, कंपाइल होता है, तो एक आदमी नहीं, उसके साथ एक टीम होती। नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं कि एक बार मैंने अपने उस्ताद अल्लामा मजलिसी से अपना एक कंफ्यूजन या डाउट शेयर किया कि अल्लाह ने कुछ ऐसी नेमतें शैतान को दी हैं जो नमाज शब पढ़ने वाले मुत्तकी और परहेजगार मोमिन को भी नहीं। मसलन शैतान बीमार नहीं पड़ता, शैतान जिंदगी उसकी बहुत तूलानी, बहुत लंबी उम्र, उसको रोजी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके लिए ट्रैवलिंग कोई मसला नहीं है, अभी ईस्ट में है और अभी वेस्ट में पहुंच जाएगा। उसे मोमिन के ऊपर कंट्रोल भी मिल जाता है। ऑल दो शब जुमा की मजलिस में जो हजरत नूह वाली हदीस आई कि शैतान कहता है कि बहरहाल ये एक बहुत ही हार्ड काम तो है, लेकिन है, यानी कंट्रोल कर लेता है मोमिन पर। तो अब ये शैतान को अल्लाह ने इतनी पावर्स क्यों दी, कोई इसका खास रीजन है? भाई एक रीजन तो ये हो सकता है कि मोमिन को टेस्ट करना, लेकिन नहीं, अल्लामा मजलिसी ने सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी लिखते हैं कि अल्लामा मजलिसी मेरे उस्ताद ने मुझे इसका ये रिप्लाई दिया, कहा कि ठीक है, आज शैतान जितना बुरा है, मिसगाइडेड है, गुमराह है, गलत है, लेकिन एक तवील अरसे उसने अल्लाह की इबादत तो की, और किस वक्त वो इबादत कर रहा था एट दैट टाइम वो पूरा सिंसियर भी था। भाई बहुत सारे हिपोक्रेट हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर उनके दिल जो है वो अल्लाह को नहीं मान रहे, वो सिर्फ पब्लिक को शो करने के लिए इबादत कर रहे हैं, दिल से उस बात पे बिलीव नहीं करते। लेकिन शैतान जिस टाइम पे इबादत कर रहा था वो पूरा सिंसियर था। हमारे यहां एक कम्युनिटी में अगर 100-200 आदमी सीधे रास्ते पे चलें और 5000 अगेंस्ट हो, तो 200 आदमी भी अपने आप को लोनली फील करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। और कहा सिर्फ ओनली वन सिंगल पर्सन, हजरत आदम से पहले इस दुनिया में जिन थे और शैतान वन ऑफ द जिन, पूरी कौम अल्लाह के अगेंस्ट है और वो पूरी कौम के अगेंस्ट, अकेला सिंगल पर्सन, पर्सन तो शायद जिनको नहीं कहेंगे, छोड़िए इसको इंग्लिश इंग्लिश को, तो शैतान इबादत कर रहा, बड़ा सिंसियर है। और जिस वक्त वो आसमानों पर गया, अल्लाह ने जिनकी कौम पे अजाब भेजा और वो शैतान को बुला लिया आसमान पर उसका रिवार्ड, तो जब वो आसमान पे जा रहा था तो उसने आसमान पे हर जगह एक बोर्ड लिखा देखा, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले की नेकी वो कभी जाय नहीं करता, हर एक को रिवार्ड मिलेगा। अब इसने भी इतनी नेकियां की, तो जब बहरहाल वो प्रॉब्लम हुआ और शैतान को किक आउट किया गया और उसको आसमानों से निकाला गया, तो शैतान ने यही कहा, क्या अल्लाह मैंने इतनी सारी नेकियां भी की? अच्छा जन्नत में तो जा नहीं सकता, जन्नत के एंट्री की पहली शर्त है इस्लाम। अच्छा ये मसला वैसे शैतान से हटकर भी पेश आता, बहुत सारे ऐसे हैं जो मोमिन नहीं है लेकिन नेकी के कुछ काम करते हैं, कुछ चैरिटी वर्क भी होता है, कुछ सोशल वर्क भी होता है, बहुत हाई लेवल पे न जाइए तो ऐसे भी होते हैं कि नॉन मुस्लिम है लेकिन अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं। आपको हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, अल्लाह ने बहुत दिया है लेकिन फिर भी रोजाना सुबह को अपनी माँ के पैर को बूसा देंगे, फिर घर से निकलेंगे रोजी के लिए। तो अब ये नेकियां हैं, इनका भी एक रिवार्ड है अल्लाह के पास, जन्नत तो नहीं मिल सकती। तो नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने यही रिप्लाई दिया, अल्लामा मजलिसी ने, कि जब शैतान को किक आउट किया गया तो उससे सवाल किया गया कि उसने ये सवाल किया, तो आए खुदा जो मेरा एक अकाउंट तेरे पास खुला हुआ था नेकियों का ना, वो कहां गया? वो जो मेरा इतनी नेकियां उसका सवाब कहां चला गया? कहा कि वो सब है, बता तुझे किस तरह चाहिए। अब ये तो शैतान को भी मालूम है कि मैं जन्नत में नहीं जा सकता, जो आज बहुत सारे साहिबान ईमान को नहीं मालूम, वो इस तरह से जन्नत का गेट खोल के दूसरों को उसमें एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं जैसे जन्नत का केयरटेकर अल्लाह ने उन्हीं को बनाया कि आओ भाई तुम भी जन्नत में, आओ भाई तुम भी जन्नत में। तो खैर शैतान को मालूम, तो उसने कहा कि खुदा बंदा तो फिर ऐसा कर कि इसी दुनिया में मुझे ये और ये और ये और ये बेनिफिट दे, रोजी का मसाला हल कर दे, सेहत का मसाला हल कर दे, ये ट्रैवलिंग का मसाला हल कर दे, या हमारे बजट का कितना बड़ा हिस्सा तो यही तीन चार जो एक्सपेंडिचर है उसमें खत्म हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि यहां पे एक सिस्टम है, और मुझे ये भी मालूम है कि सिस्टम बहुत तेजी से टूट रहा है, कितने अरसे रहता है अब आप खुद ही देख लीजिएगा। तो मुख्तसर बात यह कि शैतान की नेकियां, जब उसने नेकी की उस वक्त वो पूरा सिंसियर था, ये उसका रिवार्ड भी अल्लाह ने दिया। तो उस वक्त शैतान आसमानों से जब चला तो उसने एक सवाल किया कि खुदावंद ये जो मेरी नेकियों का रिवार्ड है इसमें कुछ चीजें और बढ़ा दे। और फिर उसमें से मैं दो जुमले इस वक्त पढ़ रहा हूं क्योंकि जो मेरी आज की स्पीच का आखिरी हिस्सा होगा, अभी तक की प्लानिंग यह है कि यही दो चीजों पर जाके स्पीच खत्म होगी। तो कहा कि अय खुदा सेहत दे, ठीक, रोजी का मसाला ना हो मुझे, ठीक, ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक, मोमिन पे मुझे कंट्रोल मिल जाए, ठीक। तो उसका अकाउंट बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारा सवाब या नेकियां जमा, और क्या चाहिए। कहा कि अय खुदा तूने अपने अपने बंदों को, मोमिन बंदों को अपने पास बुलाने के लिए अजान रखी, कॉल आओ अल्लाह की तरफ, अय्यालस्सलाह अय्यालल्फलाह। हदीसों में तो यहां तक है कि जब अजान दी जाती है तो ये समझो कि मौज़िन अजान नहीं दे रहा, खुद अल्लाह अजान दे रहा और बुला रहा, अय्यालस्सलाह अय्यालस्सलाह आओ मेरी तरफ। अब हज में भी यही अल्लाह कॉल कर रहा है कि आओ मेरी तरफ नमाज, तो ये तेरी तो अजान है, अगर मैं अपने आप को फॉलो करने वालों को बुलाना चाहूं तो मेरे लिए भी एक अजान चाहिए, मुझे एक अजान तेरी है तो एक अजान मेरी हो। ये वो रिवार्ड मांग रहा है अपनी नेकी का। खुदा ने कहा बता तेरी अजान क्या। कहा कि ये गाना बजाना, ये म्यूजिक और ये चीजें, ये शैतान ने अभी बस खाली आदम ही बने हैं, अभी तो शायद हव्वा भी नहीं, हव्वा भी पैदा हो गई लेकिन अभी उनकी औलाद नहीं हुई। उसी दिन डिमांड कर ली कि ये जो गाना बजाना है, ये जो म्यूजिशियन है, ये जो सिंगर है, ये जो डिस्को डांस होते हैं, ये जो हमारी शादियों में मिक्स गैदरिंग में गाने बजाए जाते हैं, कहा ये मेरी अजान और मैं इसको अपनी अजान डिक्लेयर करता हूं और मुझे ये आवाज स्प्रेड करने की परमिशन दी जाएगा, ठीक। और अय अल्लाह ये तो अजान है, एक वॉइस एक कॉल आओ अल्लाह की तरफ, तू अपने प्रॉफिट भी भेजेगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आएंगे फिजिकली, मुझे भी अपने प्रॉफिट चाहिए जो मेरे बंदों को मेरी जानिब लेकर आए, यानी जो मेरे कंट्रोल। पैगंबर क्या करता, जो आदमी अल्लाह के अगेंस्ट हो गया, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको अल्लाह की तरफ लेके आता। तो शैतान कहता है जो मेरे अगेंस्ट हो गया, अब जो शैतान के अगेंस्ट होगा वो अल्लाह के पास जाएगा ना, दो ही तो कैंप है ना दुनिया में, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को और शैतान को इक्वल नहीं बना रहा हूं, लेकिन जाहिरी एतबार से दो ही कैंप है, शैतान से निकलेगा। तो अब शैतान कहता है मुझे वापस चाहिए अपने बंदे, तो उसके लिए मेरे भी प्रॉफिट होने चाहिए। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग एक हदीस है, और इतनी इंटरेस्टिंग एक हदीस, सिंगल हदीस, सिंगल इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर मैंने पूरा अशरा पढ़ा, और अशरे का टॉपिक है शैतान का इंटरव्यू, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह सवाल कर रहा है, शैतान रिप्लाई दे रहा है। और फिर उसके बाद एक रसूलुल्लाह की हदीस है जो रसूलुल्लाह ने शैतान से कुछ सवाल किए, तू अल्लाह के बंदों को नमाज से क्यों रोकता है, वाय ये इसकी मोमिन की नमाज तुझे क्या नुकसान पहुंचाती। तो शैतान ने बताया मुझे नुकसान पहुंचता, तू लोगों को हज से क्यों रोकता, क्या नुकसान है। शैतान ने बताया मेरा नुकसान है तू लोगों को सदके से क्यों रोकता। कहा कि इधर कोई मोमिन सदका देता है उधर मेरी कमर या बैकबोन टूट जाती है, बिस्तर पे गिर जाते हैं, डिस्क स्लिप होती है ना, तो कितनी तकलीफ हो जाती है हमको और आपको, शैतान को भी ये प्रॉब्लम होता। तो खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग दो हदीस है, एक को हदीस कहेंगे रसूल और शैतान की बात, एक जो है अल्लाह की बारगाह में शैतान के सवालात जब उसको किक आउट करके निकाला जा रहा। तो उसमें एक सवाल ये, मेरे प्रॉफिट जो तेरे पास चले गए और मेरे पास आने चाहिए, मैं कैसे उनको वापस लेके आऊं। तो कहा कि ठीक है बता क्या प्रॉफिट चाहिए। तो वहां भी उसने जो दो किस्म के प्रॉफिट मांगे। अब हमारे यहाँ एक नबी है एक रसूल है, खैर मैं कंपेयर नहीं कर रहा, तौहीन हो रही है, और ये बिल्कुल एक्जैक्ट कंपेरिजन भी नहीं है। कहा दो, एक जादूगर, ये जो मैजिशियन है, जो जादू है, ये जादू का सिलसिला एक जमाने में बहुत ज्यादा था और अभी भी, और जादूगर का जो सबसे ज्यादा जोर चलता है वो औरतों पे चलता है। मैं औरतों की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल औरतें ज्यादा जादू पे बिलीव करती हैं, और जादूगर ज्यादातर, जो कुरान में भी हारूत और मारूत की स्टोरी आई, मुझे टाइम का इतना ज्यादा टेंशन रहता है और मैं इसको प्रेफर करता हूं। मैं ये नहीं कहता, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि कुछ बातें इनकम्प्लीट क्यों रह जाती हैं। तो वो सबसे बड़ा जादूगर का मिशन होता है सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और ये सब्जेक्ट क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, शुरू की एक दो मजलिसों में बात आई फिर आएगी। तो एक ये कहा कि ये जादूगर मेरे प्रॉफिट है, यानी जो जादूगर के पास जाता है गोया वो प्रॉफिट ऑफ शैतान के पास जाता, वो शैतान की इताअत कर रहा। जादूगर का काम ही है कि लोगों को अल्लाह के कैंप से निकाल के शैतान के कैंप पे ले जाए। फिर एक जुमला कह रहा हूं जो इंसल्टिंग, जैसे इब्राहिम का काम यह था कि लोगों को नमरूद के कैंप से निकाल के एक खुदा की तरफ लेकर आ जाए, जैसे मूसा की ड्यूटी यह थी कि लोगों को फिरौन के कैंप से निकाल के रब्बुल आलमीन के पास ले आए, इसका बिल्कुल उलट काम। और दूसरा ये सिंगर्स, ये प्रॉफिट हैं, कहा ये मेरे प्रॉफिट का सिलसिला है, बल्कि एक जुमला शैतान ने तो नहीं कहा, मैं कह देता हूं कि अल्लाह ने जो प्रॉफिट भेजे वो तो एक जगह आके वो सिलसिला कंप्लीट हो गया, आखिरी प्रॉफिट आ गया। शैतान के प्रॉफिट कभी कंप्लीट नहीं होंगे। दज्जाल भी जब आएगा ना तो सिंगर बन के आएगा और म्यूजिशियन बन के आएगा। अब हदीस आपको याद आ गई होगी कि दज्जाल किस तरह से आएगा। तो खुलासा ये कि शैतान अपने प्रॉफिट, अपना एक पूरा सिस्टम, ये जुमला, ये बात कहां से चली, शैतान की भी एक शरीयत, और बिल्कुल पैरेलल शरीयत है। अल्लाह की शरीयत में कुछ चीजें वाजिब हैं, शैतान की शरीयत में कुछ और चीजें वाजिब हैं। उनमें से एक है कि यामुरु बिल फाहशा, सूरह नूर की आयत, शैतान हुक्म देता है, यामुर ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है बेहयाई के और इनडिसेंट कामों को माशरे में बढ़ाया जाए। अब यहां पे रुकी और बहुत ही जल्दी जल्दी दो बातें मुझे आज की मजलिस में अभी मेरे प्लानिंग में है, जिसमें तीसरी फिर बात शुरू होने वाली है ये म्यूजिक और गाने के हवाले से, लेकिन अभी नहीं, ये एंड में, अगर आज टाइम मिला वरना कल। शुरू में दो बातें जो मुझे बताना। नंबर एक जुमला जो शायद मैंने अपनी फर्स्ट मजलिस में कहा था, और आज एट्थ मजलिस है, पूरा एक वीक हो गया, थोड़ा उसकी डिटेल आएगी। सब्जेक्ट वही, क्या सब्जेक्ट, शैतान हुक्म देता है बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती के काम, शेमफुल एक्ट, इनडिसेंट एक्टिविटीज, और सूरह अनाम अल्लाह इससे रोकता। और कल जो एक बात मैंने कही थी, सिर्फ एक जुमला उसको रिपीट करो, क्या जरा ये भी देख लीजिए कि अतलो मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, अल्लाह का रसूल मक्के के अंदर जब तबलीग इस्लाम स्टार्ट कर रहा है तो इन आयतों से, क्या हो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पे क्या हराम किया है, पूरी डिटेल रिवायत औस व खजरज से लेकर असद इब्ने जुरारा तक कल आपने सुनी। लेकिन जरा सीक्वेंस देखिए, और हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस के स्टेजेस है, लेकिन फुरू दीन में हम कहते हैं अव्वल नमाज, तो खुद ब खुद जहन में कंसेप्ट आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नमाज है, तभी तो उसको नंबर वन पे रखा। उसूल दीन में हम कहते हैं अव्वल तौहीद, तो लॉजिकल है कि दिमाग ये कहे कि तौहीद सबसे इंपॉर्टेंट अकीदा। अब इस आयत में देखिए, कहा अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, शिर्क ना करना। और नो डाउट इस्लाम हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेगा, शिर्क पे कभी कंप्रोमाइज नहीं। नंबर एक, चाहे वो शिर्क हो जो नॉन बिलीवर करते हैं, चाहे वो शिर्क हो जो मोमिन करते हैं, यानी मोमिन के शिर्क से मेरी मुराद आजकल वाली बातें नहीं है कि दुआ तवसुल शिर्क है, मोमिन कह रहा है नऊज़ बिल्लाह, नादे अली पढ़ना शिर्क है, मोमिन कह रहा है नऊज़ बिल्लाह, या अली कहना शिर्क है, मोमिन कह रहा है नऊज़ बिल्लाह। मेरी मुराद इससे है आमाल में शिर्क, जो रिवायत में आता है कि अगर इंसान नेकी का कोई काम दुनिया को दिखाने के लिए करे, ये तकब्बुर की एक किस्म है, एरोगेंस, जो बात अभी गुनाह के जरिए एरोगेंस आ जाने वाली है। तो अब ये है कि उसके अंदर आदमी कभी अपनी नमाज भी इसलिए पढ़ता है कि पब्लिक देखे, ये शिर्क हो गया। और जैसा कि रिवायत है, अना खैरु शरीक, कयामत के दिन अल्लाह कहेगा मैं बेहतरीन पार्टनर, बेस्ट पार्टनर। पार्टनर का क्या होता है, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, दोनों पार्टनर अपना अपना शेयर लेंगे, बल्कि झगड़े होते हैं, अल्लाह कहता है मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे पार्टनर बना दिया किसी और के साथ, नमाज पढ़ी मेरे लिए भी और उसको दिखाने के लिए भी, तो मैं अपना हिस्सा भी छोड़ देता हूं। और उस कयामत के दिन मोमिन आएगा, खुदा बंदा मैंने नमाज पढ़ी है, कहा जाओ जाके सारा का सारा जो है ना उससे बात करो, उसके उससे जाकर रिवार्ड लो, मैंने अपना हिस्सा भी उसको दे दिया, मेरे पास क्यों आ रहे। और खास तौर पर, अब ये मैंने जुमला कहा तो खास तौर पर आखिरी जमाने की साइन में, साइंस ऑफ जहूर, खास तौर पर हज के हवाले से ये बात आई, नमाज और रोजे के लिए खास तौर पर आखिरी जमाना नहीं कहा गया, हज के लिए कहा गया। आखिरी जमाने में लोग कसरत के साथ हज पे जाएंगे, इतना बड़ा नंबर कभी हज पे नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के लिए हज करने वाले बहुत कम होंगे। हदीस बहुत ही फेमस, पैसे वाले लोग इंटरटेनमेंट के लिए हज पे जाएंगे, चुनाचे उनको वहां भी मैकडोनल्ड का बर्गर और पिज्जा हट का पिज्जा और ये चीजें चाहिए होंगी। और जो मिडिल क्लास लोग हैं ये बिजनेस करने और तिजारत के लिए जाएंगे, गरीब लोग रियाकारी के लिए जाएंगे, दुनिया देखावे के लिए। तो खैर, ये हदीस तो ऐसी ही है। शेख मुर्तजा अंसारी जैसे अजीम तरीन मुश्तहिद फकीह मर्जे ने एक जुमला लिखा, 200 साल पहले का मर्जे है, लेकिन इतना अजीम कि आज तक उसके बाद जो मर्जे गुजरे सब एक तरह से इनके स्टूडेंट। बाबे क़िबला से जब आप नजफ में दाखिल हो, मौला के रोजे का वो मेन गेट बाबे क़िबला, मैंने कहा कि एंटर होने के बाद तो आप राइट पे जाइए, तीसरा रूम शेख अब्बास कुम्मी की कब्र, लेकिन वही गेट के अंदर जब आप एंटर हो रहे हैं तो गेट के अंदर लेफ्ट साइड पे शेख मुर्तजा अंसारी की कब्र है, मौका मिले तो रुक के जियारत कीजिएगा। अपने स्टेटस के एतबार से ये अल्लामा हिल्ली और मुकद्दस अर्दबेली से कम नहीं है, इतने इनके अहम अहम वाकयात हैं। ये एक आध भी वाकया मैंने बताया तो फिर आप हजरात मुझे छोड़ के घड़ी देखने लगेंगे, इसलिए मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं। शेख मुर्तजा अंसारी अपनी उस किताब में, जिसकी वजह से मैंने कहा कि 200 साल के सारे मर्जे उनके शागिर्द मकासिब, जो हमारे हौजा इल्मिया के अंदर एक बहुत अहम किताब है, इसको पढ़े बगैर आप किसी को आलिम नहीं कह सकते, मकासिब, उसमें ये हदीस हज वाली लिखते हैं। और फिर एक जुमला ऐसा कहते हैं जिसको मैं बहुत बहुत स्लो अंदाज में कहूंगा और हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। शेख मुर्तजा अंसारी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने तो ये हज के लिए कहा, लेकिन आजकल इनकी सारी लाइफ एक तरह से नजफ में गुजरी। और अगर आप सिर्फ इतना कभी हिस्ट्री में पढ़ लीजिए जाके कि शेख मुर्तजा अंसारी को मर्जे डिक्लेयर किस तरह किया गया, तो वो जो हमारे बच्चों की या यूथ की लैक ऑफ नॉलेज से हमारा दुश्मन फायदा उठाता कि भाई इनके पास इतनी नॉलेज तो है नहीं, जो इनको बताओ नॉलेज नहीं है, बिलीव कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो एतराज है कि महाराज ये सब के सब जो है ना सेल्फिश है, हर एक चाहता है उसकी तकलीफ की जाए, हर एक चाहता है खुमस उसके पास आए, हर एक इंटरेस्टेड है कि उसके मुकल्लिदों की तादाद बढ़ जाए, हिस्ट्री ही नहीं देखी है। ऐसा कहने वाले ने अगर वो सिंसियरिटी से कह रहा, और अगर वो बहरहाल प्लांटेड आदमी है हमारे दरमियान तो खैर बात ही छोड़िए। शेख मुर्तजा अंसारी मर्जे कैसे डिक्लेयर हुए, वो भी कितना बड़ा वाकया कि उस जमाने के मर्जे ने जब चेक किया कि इनकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है, सरेंडर कर दी अपनी मर्जी, ये इनकी प्रेजेंस में मैं कैसे फतवा दे सकता हूं जब मुझे पता है कि ये मुझसे बेहतर। अब वो बहुत डिटेल वाकया है, शेख मुर्तजा लिखते हैं कि आजकल नजफ जब मैं जियारत पर आने वालों को एटीट्यूड को देखता हूं, तो ये हज वाली हदीस पूरी जियारत वाली हदीस भी मुझे लगती कि पैसे वाले इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, मिडिल क्लास बिजनेस के लिए आ रहे हैं, गरीब लोग रियाकारी के लिए आ रहे हैं। देखिए, परसेंटेज हमेशा नेक लोगों का रहा, मगर कितना परसेंटेज आप प्योर नियत वालों का जो आप हज में एक हदीस सुनते हैं। ऑल दो मुझे आज हज का फिकही मसला बताना था लेकिन वो टाइम निकल नहीं पा रहा है और अल्लाह खुद ब खुद हज की कुछ हदीसें मेरी जबान पे मेरे टॉपिक के अंदर रह के जारी करवा रहा है। हज की एक हदीस आप बहुत सुनते और वो ये है कि जब इमाम मासूम ने अपने सहाबी की आंखों पे हाथ रख के मेडिकल के जरिए उनको मैदान अरफात दिखाया तो पता चला कि वो पूरा मैदान अरफात जहां 2.5 मिलियन का क्राउड आजकल है और उस साल भी बहुत लोग आए थे, मालूम हुआ कि सारे जानवर बैठे हुए हैं एहराम पहने हुए। ये शेर है, वो चीता है, वो लोमड़ी है, वो गीदड़ है, वो गेंडा है, वो हाथी है, वो कुत्ता है, वो खंजीर, लेकिन 200-300 के बीच में एक इंसान भी, 300-400 के बीच में 5 इंसान भी नजर आ रहे हैं। तो होते हैं हर जगह सिंसियर हज में भी, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि 100%, लेकिन मेजोरिटी। तो शेख अंसारी ने कहा ये आजकल हम जियारत मकासिब वो बुक है कि इसके बगैर हम, यानी हुज्जतुल इस्लाम का लेवल जब किसी को दिया जाता है ना एक्चुअल, तो इसका मतलब यह कि एटलीस्ट उसने रसायलो मकासिब पढ़ी है इस किताब की वजह से। उसके बाद जितने मर्जे बने सब शेख के शागिर्द, उसमें ये शेख अंसारी का जुमला है। लेकिन बात ये हो रही है रियाकारी, दुनिया को दिखाना। अल्लाह ने कहा मैं बेहतरीन पार्टनर हूं, अगर कोई इबादत करे मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी मैं अपना शेयर भी उसको दे देता हूं, नहीं चाहिए जाओ सारा का सारा मैंने उसको दे दिया, अब तुम्हें जो डील करना है उससे करो। लेकिन ये वाली चीज ऐसी नहीं है कि आपको याद दिलाई जाए, हर मोमिन जानता। उसके बाद ला तुशरिकु, क्या 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 बात हो रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम बाय प्रॉफिट, पैगंबर पहली दफा इस्लाम का जो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं वह बिल वालिदैन एहसान। जिस दिन अल्लाह की तौहीद का हुक्म आया उसी दिन वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म आया। इस्लाम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तीन चीजें ऐसी हैं ये हदीस रसूल कि मोमिन हो के मुसलमान हो के मुनाफिक हो के काफिर हो, अल्लाह ने हक वाजिब किया। पहला वालिदैन, दूसरा नेबर, तीसरा मेहमान, घर आने वाला मेहमान, मोमिन आए के काफिर इकराम उज़ैफ। खैर तो दो बातें, तीसरी बात वला तकरबुल फवाहिश, और खबरदार, मैंने कल भी कहा था कि जरा देखिए कि ये वाला गुना नहीं, तीसरी बात की वला तकतलू औलादकुम मिन इमलाक। अच्छा कल मैं गलती से यहां इमलाक से पहले लफ्ज खशिया इस्तेमाल कर गया जो कुरान की किसी एक और आयत में बनी इसराइल की, इस वाली आयत के अंदर लफ्ज खशिया नहीं है, यानी कल मैंने तिलावत की वला तकतलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक, इस आयत में मिन इमलाक, बात एक ही है लेकिन एक लफ्ज गलत आ गया था, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया लेकिन मुझे रियलाइज हुआ। औलाद को कत्ल न करना गुर्बत के डर से, खैर अब ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है तरबियत औलाद, छोड़िए। तीन इसके बाद, लेकिन अब देखिए दूसरे नंबर पर वालिदैन, तीसरे नंबर पर औलाद, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे। वालिदैन को औलाद का हक अदा करना है, औलाद को वालिदैन का हक अदा करना। इसके बाद आता है खुले बेहयाई वाले गुनाह के करीब ना जाओ। वैसे तो इस्लाम कहता है किसी गुनाह के करीब ना जाओ, लेकिन बेहयाई वाले गुनाह जो है ना उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाया कि वला तक्तलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह बिल इल्ला बिल हक, किसी को कत्ल ना करना ये इसके बाद आ रहा। वला तक्रबु मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यतीम के माल को हाथ नहीं लगाना मगर अच्छे तरीके से। ये लफ्ज अच्छा तरीका क्यों आया, जब ये आयत नाजिल हो रही थी या इससे के साथ यतीम के माल का हुक्म आया कि बहुत केयरफुल रहना, ये हमारे यहां आज की 21st सेंचुरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मसला बन गया, क्योंकि आजकल जो मीरास या इनहेरिटेंस की तकसीम का तरीका है वो इस्लामी तो कहीं रहा ही नहीं। मैं ईरान की बात नहीं करता लेकिन इस्लामी मुल्कों में भी नहीं, मैं तो पाकिस्तान में सारी जिंदगी गुजारकर एक केस मेरे पास नहीं आया जहां बिल्कुल सही तकसीम हुई हो, और हुई होगी, अच्छे लोग होते हैं। अगर मेरे पास कोई केस नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे लोग नहीं, लेकिन इसका यह मतलब जरूर है कि रेयर है। अब जब ये हुक्म आया यतीम का तो लोग इतना डर गए कि यतीम की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जैसे हजरत इब्राहिम के लिए है ना, कि जब आग में फेंका गया और अल्लाह ने कहा या नारो कूनी बर्दा, नहीं अभी सलामा नहीं आया, या नारो कूनी बर्दा, आग ठंडी हो जा, तो इतनी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई कि अब डर लगा कि टेम्परेचर गिरने से ना इब्राहिम ना मर जाए। आग से बचाने के लिए आग को ठंडा किया, सर्दी से भी तो लोग मरते हैं ना। कनाडा में तो हमने अपनी कम्युनिटी में कितने केस देखे। तो अब ये कि कहना पड़ा वह सलामन अला इब्राहिम, ठंडा तो हो लेकिन इतना टेम्परेचर रहे कि इब्राहिम सलामत रहे, इतना माइनस में ना चला जाए कि उससे बचे तो तेरी वजह से मर जाए। तो कभी रहमत खुदा प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम में गलत कह गया लेकिन माफी मांगते हो। ये जमजम का पानी जो आप पूछिए हज, मैं हज का ये वाला एस्पेक्ट मजलिस में आज पढ़ना ही नहीं था, खुद ब खुद आ रहा। अरे पानी जमजम जमजम जमजम, ठीक है आप लोग जो मेरे सामने, आप तो जमजम जानते हैं ना क्या, ये मैंने इसलिए कहा कि बच्चे के सामने आप जमजम और कोक रखे वो जमजम नहीं पिएगा, उसको तो वही चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं जमजम, तो जमजम का नाम जमजम क्यों पड़ा। हाजरा की दुआ से इतना पानी निकला, इतना पानी कि इब्राहिम के इस्माइल के डूब जाने का खौफ हो गया, ये पानी में डूब जाएंगे, ड्रोनिंग। हाजरा को घबरा के कहना पड़ा जम यानी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इतनी रहमतें खुदा रही। और वो अल्लाह का वादा है कि सच्ची दुआ मांगो फिर इतनी रहमत तुम्हारे पर नाजिल होगी, तुमसे संभाली नहीं जाएगी, तुमसे उठाई नहीं जाएगी। इब्राहिम के लिए आग को ठंडा किया तो सलामन कह के रोकना पड़ा, इस्माइल के लिए पानी जारी हुआ तो जम जम कह के, जनाबे हाजरा की लैंग्वेज सुरियानी थी शायद, तो खैर जम के माने ये कि रुक जा, रहमत खुदा कभी इतना ज्यादा आती है सिंसियरिटी के साथ अल्लाह से रहमत मांगे। तो खैर ये तो मिसालें जो आ गई, तो यतीम, यतीम को प्रोटेक्शन देने के लिए इस्लाम ने कहा यतीम के माल को हाथ नहीं लगाओ, यतीम बेचारे को प्रोटेक्शन नहीं मिला, वो मर गया, अब वो भूखा बाजार गया कि मुझे रोटी खरीदना, दुकानदार ने कहा नहीं भाई हम तुम्हारे हाथ रोटी नहीं बेचेंगे, अगर जरा भी प्राइस कम ज्यादा हो गए हमारी तो जहन्नम है ना, तो और हमारे पास बहुत कस्टमर, हमें कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हारे हाथ रोटी बेचने की, कोई यतीम के हाथ रोटी बेचने को तैयार नहीं, खाना नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, मकान नहीं मिल रहा, इसलिए कि डर के मारे कि यतीम जरा सा भी ओवर चार्ज कर लिया तो कहीं हम कयामत में पकड़े ना जाएं। जो यतीम का माल खाते हैं वो यतीम का माल नहीं खाते, वो आग खा रहे हैं। ये कुरान की आयत, टाइम नहीं है और मेरा मौजू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी जल्दी बात। कुरान ने कहा नहीं, वला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, जो सही तरीके से उस तरह यकीन यतीम का माल लो। वो औफुल कैल वल मीजान, हमारे यहां एक बहुत बड़ा गुनाह सुनिए, लफ्ज सुनिए तत्फीफ, ते और तोए, एक जरा सॉफ्ट अंदाज से बोला जाता है, एक में बहुत जोर देना, तत्फीफ। ये जो हमारे यहां इतना बड़ा गुना हो रहा, इतना बड़ा गुना तत्फीफ का, कुरान ने इसको स्टार्ट तो इससे किया था ना कि बिजनेस में नाप तोल में कमी ना करो, फिर तो तत्फीफ हमारी सारी लाइफ के ऊपर छा गया। वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, पूरा एक सूरा नाजिल हुआ तत्फीफ करने वालों के लिए अजाब। लेकिन तत्फीफ अर्ली स्टेज में, पहले मरहले में इसका ताल्लुक था वजन से, फिर ये पूरी लाइफ इसके अंदर आ गई, और ये बहुत बड़ा एक गुनाह हमारे यहां, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहेंगे डबल स्टैंडर्ड। कुरान ने जो तत्फीफ की तफसील की कि मसलन हम बिजनेस कर रहे हैं, जब कोई चीज हमें तोल के देना है जरा सा हम कम देते हैं, जरा सा एक जरा सा हाथ की सफाई से आदमी कम, और जब किसी से लेना है तो जरा बढ़ा के ले लेते हैं। तो ये जो हमारे यहां डबल स्टैंडर्ड है, हमारी बेटी की शादी हो जाए तो हमें जो है उसकी पूरी ससुराल कितनी बुरी लगती, और दूसरे की बेटी हमारी बहू बन के आ जाए तो दासी के भी कुछ राइट्स होते हैं, इसका कोई राइट नहीं। तो अब ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है ना, तो वो बहुत बड़ा गुना, और वो थोड़ा सा फैमिली लाइफ इन इस्लाम का जो एक टॉपिक आएगा कल या परसों, उसमें ये बात आएगी। तो बात यहां से शुरू कि देखो नाप तोल के अंदर जरा से कमी ना हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आयत यहीं पर आई, यहां पर भी आई, वहां भी यही प्रॉब्लम। दुकानदार बिजनेस करते हुए घबराने लगे। आपको अंदाजा नहीं है कि आजकल जितना सिंपल हमने इस्लाम को ले लिया और जितना इजी वाजिबात को ले लिया, जब अल्लाह के रसूल खुद थे और अर्ली स्टेज था तो लोग उस वक्त कितना घबराते थे। हर दुकानदार घबरा गया कि भाई वजन करने में मसलन हवा चल गई, जरा सा तराजू हिल गया, जरा सा हमारा हाथ कांप गया, कोई इंटेंशन नहीं। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन आज है ऐसे स्केल, पहले तो नहीं। कुरान का नहीं भाई, इतना भी मत डरो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी तुम्हारी ताकत है अल्लाह उतना ही हुक्म दे रहा है। लेकिन लेकिन बात ये नहीं है, बात ये खुले गुना बेहयाई के गुना, कत्ल से भी पहले उसको बताया, माल यतीम से भी पहले उसको बताया, नाप तोल में कमी जो हुकूक और नाप बिजनेस का मसला उससे भी पहले उसको बताया। और ये आयतों की आखिरी आयत बहुत अहम। अब ये कि पूरी आयतें मैं नहीं पढ़ रहा, इससे तो एक अलग अशरा मेरा होता है और होना भी चाहिए, इसमें 10 बातें और हर बात की एक मजलिस जो है ना वो जरूरी। लेकिन आखिरी आयत भी बहुत अहम है, क्योंकि आज सूरह अनाम को बस बंद करके रख देना। आखिरी आयत यह है कि सिर्फ एक रास्ते पे चलना, एक से ज्यादा रास्तों पे न चलना। क्योंकि आजकल ये भी एक इंटरफेथ इंट्राफेथ क्या कंसेप्ट आ रहा है, जो किसी भी मजहब को फॉलो करो जन्नत तो तुम्हें मिल जाएगी। ये आखिरी आयत है, कब नाजिल हुई? बिल्कुल शुरू इस्लाम, जब अल्लाह के रसूल ने तबलीग शुरू की। मगर यहां बात है खुले गुना, खुले गुना, बेहयाई के गुना। अब यह तकब्बुर है, यह गुनाह पर तकब्बुर है। दौलत पे तकब्बुर क्या है कि आप अपनी दौलत को शो करते हैं, वरना ऐसे पैसे वाले भी हैं जो इतने हम्बल और इतने सिंपल होते हैं कि अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि इसके पास कोई पैसा होगा। बाज औकात को लगता है कोई फकीर हमसे भीख मांगने तो नहीं आ रहा, वो इतना सिंपल होते। और उन 100 करोड़ पैसे वालों से ज्यादा उनके पास दौलत होती। लेकिन भाई तकब्बुर किसका नाम है? शो करने का, ताकत अथॉरिटी। जिसके पास ताकत है, हमने देखा कि बाज के पास इतनी पावर है। अब जैसे बहुत मशहूर एक रिवायत है, रिवायत तो नहीं कहेंगे, अल्लामा मजलिसी ने ऐनुल हयात में यह वाकया कोट किया, फिर अक्सर उलमा इसको दुआ की मौजू में पढ़ते हैं। हमारा भी थोड़ा सा सब्जेक्ट दुआ तो है ना, और वो ये बिफोर इस्लाम बनी इसराइल। लेकिन एक चीज तो आदम से लेकर कयामत तक अंडरस्टूड है कि अल्लाह के जितने भी नाम, 99 नाम अस्माए हुस्ना आजकल कहलाते, 1000 या 1001 नाम दुआए जोशने कबीर आज कहलाते, दुआए मशरूत अल्लाह के नाम। मगर जितने अल्लाह के नाम है सबका स्टेटस इक्वल नहीं। एक इनमें इसमें आजम, जिसको दुआए अराफात में इसमें अकबर भी कहा गया है, इसमें आजम भी, अकबर आजम सबसे बड़ा नाम। अब बकौल कुछ उलमा के पूरी कायनात का सिस्टम इसमें आजम पर चल रहा। जैसे कंप्यूटर में फीड किया जाए प्रोग्राम, उसके बाद कंप्यूटर उसके हिसाब से चलेगा। इसमें आजम अगर किसी को मिल जाए तो कायनात का कंट्रोल उसके हाथ में इस तरह से आ सकता कि वो चाहे तो बारिश बरसाए, चाहे तो बारिश को रोके। अल्लाह नहीं बनेगा, यह गलतफहमी ना होने पाए। वो अगर चाहे इसमें आदम, उसके पास एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है ना। जैसे अगर आपके पास यहां का रिमोट आ गया, अब ये तो खैर अल्लाह और आप लोगों की तौफीकात बढ़ाए, आपको हौसला दे कि लंदन के शायान शान सेंटर अब बने जब मैं दोबारा यहां पे आऊं। लेकिन आजकल जो सेंटर बन रहे हैं, नए नए, हर चीज रिमोट कंट्रोल। वो एक छोटा सा रिमोट है उसके पास, वो अपने घर में बैठे बैठे जब लाइट चाहे ऑफ करे, चाहे ऑन करे, जब चाहे वो ये हीटिंग ऑन करे, जब चाहे ऑफ करे, जब चाहे माइक ऑन करे, जब चाहे ऑफ करे। तो अब एक रिमोट उसके हाथ में, उसका किसी और के हाथ में आ गया, तो क्या वो खेल कर सकता है इसके साथ? लेकिन इसमें आजम, सूरज, आज हम बहुत थके हुए, आज हमारा दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, हमने सूरज को रोक लिया, मालूम है टाइम रुका हुआ है, 3 घंटे के बाद सूरज निकला। अब ये इसमें आजम, मैं बहुत लाइट अंदाज में समझा रहा हूं। एक नाम है अल्लाह का इसमें आजम। बनी इसराइल के एक नौजवान को पता चला कि ये इसमें आजम हमारी फुला, हमारा एक आलिम है, उसको मालूम है कि ये इसमें आजम उसके पास। अब ये इसमें आजम चाहिए था कि इसमें आजम मिल गए। इसमें आजम तो खैर बहुत बड़ी चीज है, मैं 2 लाइनों की कोई दुआ कभी कोट करता हूं कि इसके ये फायदे। तो इतने मोमिनीन आके रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा अशरा पढ़ा तो एक के बाद दूसरा कोई सवाल नहीं करेगा क्या पढ़ा आपने। हाँ कोई क्रिटिसिज्म अलग बात है, लेकिन किसी चीज के एक्सप्लेनेशन, दुआ नहीं मौलाना ये दुआ लिख दीजिए, ये दुआ बता दीजिए, ये दुआ पढ़ दीजिए, ये दुआ हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड करा दीजिए। तो अब इसमें आजम तो सबसे बड़ी दुआ, फिर तो आपको किसी और दुआ की जरूरत ही नहीं है। सेहत चाहिए कि औलाद चाहिए कि माल चाहिए कि बीवी चाहिए, नहीं ये जुमला ले लेता हूं फिर कुछ खवातीन के फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगे। तो खैर, इसमें आजम का मतलब यह है कि जो आपको चाहिए वो चले गए आलिम के पास, बड़ी खिदमत, बहुत खुशामाद, बहुत ये हमको बता दी। उन्होंने कहा कि इसमें आजम ये अल्लाह का सीक्रेट, और इसलिए सीक्रेट है कि इसके लिए आदमी के पास बड़ा पेशेंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी आम आदमी को, इमोशनल आदमी को इसमें आजम दिया जाए तो वो तो सूरज, चांद, दिन रात, सर्दी गर्मी, हर चीज को खेल बना देगा, कायनात का पूरा सिस्टम चेंज करके रख देगा। इमाम की वो हदीस याद कीजिए कि इमाम से पूछा गया, मौला हजरत इब्राहिम के जमाने में ये स्टार वाले जो लोग थे इनका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट क्यों निकलता था, और हजरत मूसा की विलादत से पहले भी ये इतना परफेक्ट इनका कैलकुलेशन होता था जो स्टार, योर स्टार, अब जो है इतना परफेक्ट नहीं है, रीजन क्या? तो इमाम ने यही रीजन दिया ना, एक हदीस, बहुत मशहूर हदीस, वो भी शेख मुर्तजा अंसारी ने मकासिब में लिखी है। तो खैर, सिस्टम अगर कोई कायनात का चेंज कर दे सिस्टम, तो कहा कि नहीं इसके लिए बड़ा पेशेंस होना चाहिए। कहा मेरे पास बहुत पेशेंस। कहा कि ये तो हर आदमी कहता है बहुत पेशेंस, नहीं है इतना पेशेंस। कहा है? कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन वो बहरहाल पीछे लगा हुआ है मंजद्दा वजदा वाले उसूल पर जो पैगंबर की हदीस है। आखिर एक दिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग इन आलिम के पास आया। आज वो बहुत गुस्से में, रोजाना तो बहुत ही ज्यादा वो हम्बल बन के, क्योंकि उसको एक उसकी एक डिमांड थी, एक ख्वाहिश थी, आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए और कहा देखिए अब लिमिट क्रॉस हो गई, अब कयामत के दिन मैं अल्लाह से आपकी कंप्लेन भी करूंगा और अल्लाह भी आपको सजा देगा। क्यों, क्या हुआ? कहा कि आज सुबह के बाद, नमाज के बाद मैं सिटी के बाहर निकला तो वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, यानी 200 साल की एज होगी, 300 साल की एज होगी, और बहुत ही बूढ़ा, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां, और लग बिराज की फिजिकल फिटनेस जो 200 साल के आदमी की होनी चाहिए। इतने में वहां से आर्मी का एक नौजवान गुजरा, ये उसके जरा रास्ते में था, उसने कहा कि हटो यहां से। बूढ़ा आदमी उसकी बात मान ली, लेकिन अब खड़ा हो और थोड़ा सा मूव हो इसमें टाइम लगा उसे, बहुत बूढ़ा, 70-80 साल के बाद बूढ़े आप देखेंगे नमाज पढ़ने में उनको मुश्किल हो जाती। मरहूम आयतुल्ला खोई के पीछे जिन लोगों ने आखिरी आखिरी नमाजें पढ़ी थी तो बेहौल्लाह व कुव्वत यकूम व अकूद कहने में कितना उनको टाइम लगता था, और बाकायदा दो स्टूल रखते थे और उसके सहारे से वो खड़े होते थे। तो जो नया आदमी ज्वाइन करे जमात को तो उसकी तो समझ में नहीं आता था। तो एज बहरहाल उसके असरात है, ये तो 200 साल 300 साल की एज, टाइम लगा इसे हटने में। अब वो था फौजी नौजवान, एरोगेंस, ताकत, फौज में, आर्मी में, चुनाचे गुस्से में आ गए, ये भी नहीं देखा ये मेरे दादा नहीं, दादा के दादा की एज का आदमी, और मजबूर है ये मेरी बात मान भी रहा है लेकिन फिजिकल फिटनेस नहीं है तो टाइम ले रहा। उसने एक मरतबा उसको किक मारना शुरू कर दिया। अब ये फौजी लोगों के बूट कभी आप देखेगा कैसे होते हैं, तो एक मरतबा उसको इतना मारा और बेचारा बूढ़ा आदमी जख्मी होकर जमीन पे गिर पड़ा, और मैं वहां से जा रहा था। अब मैं आर्मी वाले से क्या कहता, लेकिन अगर मेरे पास इसमें आजम होता, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, ना सेहत चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोई और चीज, लेकिन ऐसे मजलूमों की तो मदद करना है ना, ऐसा उसको लेसन टीच करता। उन आलिम ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे इसमें आजम किसने बताया? उसी बूढ़े ने बताया, असल इसमें आजम उसके पास है, लेकिन कितना पेशेंस उसका है कि तुम देख रहे हो, तुम्हें रहम आ रहा है, तुम्हारा दिल चाह रहा है इसमें आजम इस्तेमाल करो, और जो खुद इसमें आजम रखता है इसने किस तरह से हर चीज टॉलरेट किया और इसमें आजम इस्तेमाल नहीं किया। ये पेशेंस जो है ना, ये अपनी जगह दुआ के हवाले से भी और बहुत सारी चीजों के हवाले से, लेकिन तकब्बुर, एरोगेंस, ताकत है अगर शो करेगा आदमी, हाँ बहुत ही हम्बल लोग भी जिनके पास है ताकत बोलते भी नहीं, यानी खुद अगर मासूमीन की सीरत देखी, मौला अली इस तरह बाजार में जाते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था कि हमारा रूलर जा रहा, कैसे कैसे लोग मौला को वहां आके एक आम आदमी समझ के कंडेम करते थे, बाद में माफी मांगते थे। तो आप एरोगेंस किसे कहते, जा शो होता तो गुनाह, बहुत से लोग गुनाह करते, लेकिन जब एरोगेंस होगा ना तो गुनाह लोगों के सामने करेगा, फिर पब्लिक में करेगा। जब गुनाह खुल के किया जाए दैट मीन्स ये आदमी अपने गुनाह पे एरोगेंट। वो पूरा सिक्वेंस मिलाइए, माल, ताकत, इल्म, बहुत बड़े बड़े आलिम शो ही नहीं होने देते कि हम इतने बड़े आलिम है, लेकिन जो एरोगेंट होगा हर जगह जाके ऐसा शो करेगा मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है, हो सकता है हो भी, लेकिन ये साइन है एरोगेंस की। तो जब गुनाह अगर हमने किया, शराब पी, खुदा ना करे, ये यूट्यूब वाले जरा होशियार रहे, अगर खाली इतना जुमला उन्होंने अपलोड कर दिया कि मौलाना ने कहा मैंने शराब पी, ओहो कल तो खजब हो जाएगा। तो खैर ये तो मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, वजाहत करना आजकल पड़ रही है जरा देखिए, वरना इतना जुमला कल आ सकता है कि एक जाकिर शराब पीने का इतराब कर रहे हैं मिंबर के ऊपर, इतने बेहया। तो अब मैंने फर्ज किए शराब पी लेकिन छुपा के पी, इसका मतलब यह है कि गुनाह को गुनाह समझ रहे हैं, एरोगेंस नहीं। आज शराब पी पब्लिक के सामने शराब पी, दैट मीन्स खाली गुनाह नहीं कर रहे, गुनाह का एरोगेंस हमारे पास मौजूद है। वला तकरबुल फवाहिश, शेमफुल और इनडिसेंट एक्टिविटीज में वो सारे गुनाह आ जाते हैं जो आप लोगों के सामने खुल के करें। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट। और अब यहां पे बात खत्म करना पड़ रही है, टाइम इतना नहीं। अब ये जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर हैं हज के या जियारत के, वो भी शायद मुझसे एग्री करें, वो ये है कि दुनिया में आजकल एक उसूल है, और वो ये है कि कोई कौम बहुत ही कल्चर्ड और सिविलाइज्ड है, व्हाट इज द साइन, कैसे क्राइटेरिया क्या है कि ये कौम बहुत कल्चर्ड है और वो अनकल्चर्ड कौम। तो इसका एक उसूल सोशियोलॉजी वालों ने लिखा है, कोई छोटी बात नहीं, वो है उनके टॉयलेट्स, घर के नहीं, पब्लिक टॉयलेट। जिस कौम के पब्लिक टॉयलेट क्लीन और नीट होते हैं, साफ सुथरे, कोच स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, दैट मीन्स ये बहुत ही कल्चर्ड कौम। अच्छा, लास्ट मंथ में कनाडा की मजलिस में भी यही एग्जाम्पल दे रहा था, इत्तेफाक से उस दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे था, मुझे पता ही नहीं चला, तो लोगों ने बाद में बताया, दिन एक दिन दुनिया में यूएनओ मनाती है टॉयलेट डे, कि किसी भी कौम के कल्चर्ड होने की पहचान ये। चुनाच अगर आपको जाके देखना हो कि मैं फुला इलाके में पहुंचा जहां के लोग कल्चर्ड और सिविलाइज है, ये सब अनकल्चर्ड, रेस्टोरेंट में जाइए पब्लिक टॉयलेट देख लीजिए, और बस स्टेशन पर जाइए उसके टॉयलेट देख लीजिए। और हम जरा और इजाफा कर देते हैं कि किसी शिया मॉस्क में या इमामबाड़े में जाइए उनके टॉयलेट देख लीजिए, क्लीन है, साफ सुथरे हैं कि नहीं। खैर, हमारे यहां भी वो तो चीज नहीं होती, क्या कहते हैं, गिरफ्ती जो दीवारों पे लिखते हैं, बाकी में ये पहचान। और हम लोग जब हज पे कोई बिल्डिंग लेते हैं या जियारत पे ग्रुप के लिए, मैं तो सबसे पहले जाके एक एक कमरे का टॉयलेट चेक करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक साइन है किसी भी कौम के कल्चर्ड होने। उसी तरह की एक साइन इस्लाम ने बताई कि अगर ये देखना हो कि ये आदमी खुला गुनाह करने वाला है, जो इस्लाम में पहले दिन रोका गया, यानी कुछ खौफ खुदा है, तो उसकी साइन यह है कि उस कौम की या उस फैमिली की शादी को जाके देख लीजिए। अगर शादी के अंदर उसने मेंटेन रखा है तकवे की बाउंड्रीज को और शरीयत के अहकाम को, अंदरूनी तौर पर गुनाह होते रहेंगे, लेकिन अगर पता चले कि एक एटमोसफियर जरा रिलीजियस है, जरा सी स्पिरिचुअल है, दैट मीन्स कि ये गुनाह करता भी होगा, तब भी ये वो ला तकरबुल फवाहिश, खुले गुनाह वाला नहीं है, गुनाह पर एरोगेंट नहीं है, ये अल्लाह का खौफ है इसके दिल में। और अगर आप शादी में, शादी बेहतरीन क्राइटेरिया है किसी भी आदमी के, रिलीजियस होने को नहीं, फेयर ऑफ अल्लाह है कि नहीं है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता और एरोगेंट होने के। और अगर आप गए, आपने देखा, वैसे तो आम दिनों में जाएं तो इसके घर में हदीस किसा भी है और सूरह यासीन भी है और दुआओं के कैसेट भी चल रहे हैं और मुसल्ला भी बिछा हुआ है और नमाजें भी टाइम पे पढ़ी जा रही हैं, लेकिन शादी होती हराम वाली मिक्स गैदरिंग, म्यूजिक, क्या मुझे नहीं पता है कोई लफ्ज आजकल बच्चे बहुत कहते हैं, डीजे बहुत जरूरी है शादी के अंदर, पता नहीं क्या चीज होती है डीजे, कहा कि नहीं ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर शादी नहीं हो सकेगी। तो अब मसला यह है कि एक निगाह डालिए शादी पर, अंदाजा हो जाता है कि ये वो खुला वाला गुनाह, जिसको मैंने कहा गुनाहों का एरोगेंस, ये वो है फैमिली के। और यहां एक बात और कह, इमाम मासूम ने फरमाया, जब तुम देखो कि कोई घर बन रहा, ये बड़ी बड़ी हदीसें हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, सॉरी, कि कोई घर बन रहा और ये देखो इस घर के कंस्ट्रक्शन में ओनली अ सिंगल ब्रिक गसबी है, समझ लेना कि घर तबाह होकर रहेगा, समझ लेना कि इस घर में कभी बरकत नहीं आई। अभी तो घर बना ही नहीं है, अभी तो ये भी नहीं पता इसमें कौन लोग आके रहने वाले हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि बाद में क्या उनका अंदाज होगा। इमाम ने कहा कि एक सिंगल ब्रिक अगर गसबी, और जहां तक मुझे याद पड़ता है ये तो नहीं, इससे सिमिलर हदीस आयतुल्लाह खुई और आयतुल्लाह सीसानी ने इस्लामिक लॉ में गस्ब के चैप्टर के शुरू में लिखी हुई है। तो एक ब्रिक अगर किसी घर में गसबी है जो हक नहीं है हमारा, हराम वाली, ये साइन इस बात की है कि इस घर को तबाह होना है, खत्म होना है, इस फैमिली को टूटना। उसी तरह शादी में जब हम जाते हैं तो दुआ जरूर करते हैं, हमारा काम दुआ करना कि अल्लाह इस कपल को जो है वो मरते दम तक आपस में पीस और मोहब्बत और लव हो। लेकिन अगर शादी का एटमॉस्फेयर ये, तो दिल के अंदर से आवाज आ जाती है कि ये शादी ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही। जो आजकल हम देख रहे हैं कि आज निकाह होता है, नेक्स्ट वीक या बहुत हुआ तो नेक्स्ट मंथ वही लोग आलिम के पास वापस आए कि हमको डिवोर्स चाहिए। अब तो हमें कहना पड़ता है लोगों से कि जब कोई निकाह पढ़वाने आता है हमारे पास तो हम उससे कहते हैं कि आप डिवोर्स कब पढ़वाएंगे अभी से बता दीजिए ताकि उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करें। अरे आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी छोटी कम्युनिटी में 3,500 डिवोर्स एक साल में हुई, ऐसी कम्युनिटी जिसका टोटल पॉपुलेशन लेस देन 50,000 है, एक साल में 3,500 तलाक। बाज औकात समटाइम डिवोर्स के बाद ये फैमिलीज भी परेशान है कि ये डिवोर्स हो कैसे गई। उसके अंदर एक बहुत बड़ा रीजन वो चीजें हैं जो कल या परसों आएंगी। एक ये भी कि भाई जब आपने शादी ऐसी की कि शैतान के प्रॉफिट को बुलाया, तो शैतान का प्रॉफिट तो आके क्या करेगा, घर बनाएगा कि घर तोड़ेगा, उसको तो पहले दिन से ही हमने एंट्री दे दी, आओ और आकर इस रिश्ते को तबाह करो। लेकिन बात है ये खुले गुना, शादी बेहतरीन एग्जाम्पल है जहां सबसे ज्यादा खुले खुले गुना होते हैं, जो इस्लाम में पहले दिन से ही जिसके ऊपर पाबंदी आई कि कत्ल बाद में और यतीम का माल बाद में, वला तकरबुल फवाहिश। और इसमें भी खास तौर पर सिर्फ एक जुमला, टाइम नहीं, सिर्फ एक जुमला, हाँ ये एक जुमला आज के लिए, अभी जो तीन रिमेनिंग स्पीचेस हैं उनमें से किसी एक में जरा सी मजीद डिटेल आएगी, लेकिन एक जुमला। और खुले गुनाहों में जो सबसे खतरनाक गुनाह माना गया वो है गाने का और सिंगिंग का, वो जो मसलन ओपनली एडल्ट्री हो या ओपन बेहिजाब औरतें घर से निकले, वो सब बात का स्टेज, ये जो इतना कॉमन आजकल गुनाह हो गया है म्यूजिक का। अच्छा नॉट म्यूजिक, नॉट म्यूजिक, यही एक जुमला मैंने टोरंटो में पढ़ा था, जो अभी मैं घर भी नहीं गया और फेसबुक पे आ गया कि एक स्पीकर ने आके आज म्यूजिक को भी हलाल कर दिया। तो वो आयतुल्लाह सीसानी का कोड ऑफ प्रैक्टिस देख लीजिए। और दीगर महाराज ये कि म्यूजिक इस्लाम में बेसिकली हराम चीज नहीं है, सिंगिंग हराम है, म्यूजिक भी हराम है, लेकिन म्यूजिक की दो किस्में, एक इंटरटेनमेंट वाला म्यूजिक और एक नॉन इंटरटेनमेंट, तो ये वाला हलाल है वो हराम है। सारी चीजें बुक में है, ये मेंबर के ऊपर मैं वो बात क्यों बताऊं जो आपको बुक में भी मिलेगी और इंटरनेट पे खुद आगे सिस्तानी के ऑथेंटिक वेबसाइट पर, इधर उधर नहीं। तो खुलासा ये है कि ये जो है बेहयाई के गुनाहों में सबसे खतरनाक ये गुनाह, और ये भी एक रीजन कि आखिरी जमाने के साइन में ये बहुत ज्यादा है कि गाना इतना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा कि जिसे नहीं भी सुनना है उसे सुनना पड़ेगा, हमें नहीं सुनना गाना, ठीक है जिसे सुनना है हम चले, हम उसको नहीं अनिल मुनकर भी नहीं करते, हम अपनी ड्यूटी भी अंजाम नहीं देते, वो करे वो जाने उसका काम, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा आखिरी जमाने में, हत्ता जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, खाने काबा के पर्दे से लिपटे हुए आप मुल्तजम पर कह रहे हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, और बराबर वाले के जेब से जो है ना म्यूजिक की आवाज आ रही, हम कहां सोचेंगे कि भाई गाना शादी में होगा, गाना कहीं डीजे में होगा, गाना कहीं रेस्टोरेंट में होगा, खाने का वो तो कहिए कि करबला नजब में मोबाइल रख लिए जाते हैं हरम के बाहर, वरना तो वहां भी आप ये तमाशे देखेंगे। मगर ये बहुत अहम गुनाह, एक सिर्फ एक जुमला मैंने कहा कि शैतान ने क्यों ये कहा कि ये मेरी अजान है, और अजान की आवाज कान में आती है तो बाज़ औक़ात मोमिन जो वैसे रेगुलर नमाजी नहीं है फिर भी चला जाता है मस्जिद की तरफ, ये मेरी अजान है, क्यों कहा शैतान? और सिर्फ एक एक जुमला जुमला कहते कहते चार जुमले कह गया, बस ये लास्ट जुमला। और ये भी रिप्लाई है उस सवाल का कि जब रसूलुल्लाह ने कहा कुल्लो मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम वलाकिन अबवाहु युहव्विदानहु वयुनस्सिरानहु वयुजव्विसानहु, बच्चा तो हर एक पैदा होता है फितरत इस्लाम पर। तो ये यजीद क्या बाई बर्थ यजीद था? तो फिर उसका कसूर क्या हुआ? या अल्लाह ने उसे भी जस्ट लाइक एवरी न्यू बॉर्न बेबी पाक और पाकिजा पैदा किया, बाद में किसी चीज ने यजीद को यजीद बनाया। अब आप जाके यजीद की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, ये तीसरी दफा ये जुमला मैं कह रहा हूं इस अशरे में। यजीद को समझना है तो थोड़ा यजीद बन के सोचना पड़ेगा। यजीद को किस लिए यजीद बनाया? अब जो लोग कल नहीं आएंगे या रिमेनिंग मजालिस में नहीं आएंगे उनके लिए बस एक जुमला कहूं, जो आएंगे तो जरा इसको एक्सप्लेन करूंगा। यजीद को गाने ने यजीद बनाया है, गाने ने, बस इससे ज्यादा बात नहीं। और यही वजह या ये भी एक रीजन, क्या जुमले वो कहता है पुकार पुकार, कहता है कि अरे मेरी सिंगर गाओ गाओ और गाओ, ज्यादा गाना गाओ, इसलिए कि मेरे कान बहुत नजिस हो गए, इसको पाक करना जरूरी। अब जब कोई चीज नजिस हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका अलग होता, कोई चीज पानी से पाक होती और कोई चीज मसलन सूरज से पाक होती, और कोई चीज ऐसी है कि मसलन इनकलाब से पाक होती है और इस्तेहाला से पाक होती है। जो जेलेटिन आपके बच्चे हर वक्त सवाल करते हैं, तो पाक करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। वो कह रहा है मेरा कान नजिस हो गया है, कान को पाक करने के लिए गाना चाहिए। ये है वो क्लीनिंग एजेंट, ये है वो सोप या लोशन या जो भी कहिए जिससे कान पाक होगा, क्योंकि मुअज्जिन ने अजान दे दे के मेरे कानों को नजिस कर दिया। इतनी अजान मेरे कान में आती है कि मेरे कान अजान सुन के नजिस हो गए हैं। और नजिस हो गए, ये देखिए एक स्टेप। अब पाक करने का तरीका है कि गाने की आवाज में, ये बिल्कुल वही शैतान वाली हदीस नहीं, क्या है खुदा तेरी कॉल होगी अजान और मेरी कॉल होगी गाना। हमारे यहां जो एक उसूल है, बात बहुत फैल रही है और मैं डर रहा हूं इसलिए मैंने बस बात यहीं पे इनकम्प्लीट छोड़ दी, लेकिन एक उसूल है कि अगर कोई आदमी कभी बहुत गुनाह करे, काफी अरसे गाने वाने बहुत सुने हैं, अब वो तौबा कर दे, गुनाह माफ तो है, लेकिन बेटर यह कि कुरान दुआएं ये सब के जरिए अपनी प्योरिटी को बढ़ाए। यजीद बिल्कुल इसका उल्टा जुमला कह रहा, क्योंकि यजीद को यजीद बनाने में सबसे बड़ा हिस्सा इस गाने का, जो आज मोमिन के घर तक में इस तरह है कि नहीं सुनना फिर भी आपको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, इतना ये वाइडली स्प्रेड गुनाह जो यजीद को यजीद बना रहा। खाली यजीद पे लानत करना इनफ नहीं है, वो भी जरूरी, मगर ये भी देखना है कि कोई वो काम हमसे ना हो मिस्टेक। कौन यजीद? इतना जालिम बन गया। ये दो दिन पहले जो मैंने मसाइब पढ़े, मसाइब नहीं रिपीट कर रहा हूं, मस्जिद में नमाजी को भी बुला रहा तो ना हथकड़ी काटता है ना बेड़ी काटता है ना गले का तौक उतारता, जो इतना जालिम बन गया कि दरबार में मोहम्मद की नवासियां ज़ैनब कुबरा सफेद बालों से चेहरा छुपाए हुए देख रहा है कि बच्चियां हैं, देख रहा है कि बूढ़ी औरतें, मगर वो शराब में और शतरंज खेलने में इतना ज्यादा महव है कि ज़ैनब कुबरा खड़े खड़े थक गए, घुटने दर्द करने लगे उस ज़ैनब कुबरा के, जिसने पूरी शाम गरीबा लुटे हुए काफिला पूरी रात ज़ैनब ने पहरा दिया। लेकिन करबला से शाम आते आते ज़ैनब ने कितने सख्त इम्तिहान दिए। ज़ैनब ऊंट से भी गिरी है बच्चों को बचाने के लिए, ज़ैनब ने चेहरे पे कोड़ा भी खाया है अपनी चादर को बचाने के लिए, ज़ैनब ने बाजार शाम में शामी औरतों के पत्थर भी बर्दाश्त किए हैं जो छत पे पत्थर लेके बैठे हैं और इस काफले पे पत्थर फेंक रहे हैं। बहुत कमजोर हो गई है अली की बेटी फातिह खैबर की बेटी। देखिए ये जुमला वही है ना जो मौला ने कहा था, 21 रमजान को या 20 रमजान की रात को यही कहा था ना, सलूनी सवाल करो, लेकिन देखो आज सवाल जरा शॉर्ट करना, तुम्हारे मौला के बदन में ताकत नहीं। ये वो अली कह रहा है जो फातेह खैबर था, खैबर का दरवाजा उखेड़ लिया, आज कह रहा है कि मैं इतना कमजोर हूं। ये वो जैनब है जो शाम गरीबा सारी रात जले हुए खेमे की लकड़ी उठाकर काफले की हिफाजत कर रही है, मगर दरबार शाम में आते आते इतनी कमजोर हो गई कि घुटने दर्द करने लगे। दरबार में एक भी गैरतमंद नौजवान नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि आए मोहम्मद की बेटियों, हम जवान हैं, हमारा क्या है, हम खड़े हो जाएंगे, तुम अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ। यजीद मना कर देता वो बात का था, किसी ने कहा ये नहीं कहा, एक आदमी हमको नजर नहीं आया। मगर जैनब, जैनब है, ये सारे मसाइब को बर्दाश्त किया किस हिम्मत के साथ। हाँ भैया, मसाइब में जैनब अकेली नहीं, कोई जैनब को सपोर्ट करने वाला है, कोई जैनब को सहारा देने वाला है। वो कौन है? ये वो तारीखें हैं जब ये सैदानियां शाम के कैदखाने में दिन और रात गुजार रही हैं। शाम का क्लाइमेट कैसा सख्त होता, गर्मियों की गर्मी भी आप देखें, सर्दियों का जो कोल्ड वेदर है वो भी आप देखें, और कैदखाना ऐसा है जिसपे कोई छत नहीं। गर्मियां हो के सर्दियां हो, दिन हो के रात हो, चमकने वाला सूरज हो के रात को, आधी रात को चलने वाली वो बहुत ही ठंडी हवा हो, जैनब इसी में अपने लुटे हुए घर को, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी। अलबत्ता अहले बैत की मजलूमियत ऐसी, जो अहले बैत को नहीं भी जानते वो इनकी मजलूमियत देख के इनका कलमा पढ़ते हैं। यजीद ने सबसे जालिम आदमी को अहले बैत की इस जेल का सुपरवाइजर बनाया था, फारसी में जिसे कहेंगे दरोगा। वो शुरू में बहुत जालिम था, जब अहले बैत की ये मजलूमियत देखी, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। फिर वो वक्त आया कि एक तरह से अहले बैत की बहुत क्लोज हो गए। एक दिन वो मेरे मौला सज्जाद के पास आया, बाकी तो सारी बीबियां हैं, एक ही तो मर्द है। मौला के पास आया, कहा फरजंदे रसूल, मैं आप लोगों का दुश्मन था, अब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन देखिए मौला, ऐसा तो ना करे ना कि आप मेरे पूरे फैमिली और मेरे पूरे खानदान के कत्ल का इंतजाम करेंगे। अरे यजीद को इत्तला मिल गई, मैं भी मारा जाऊंगा, मेरी सारी फैमिली मारी जाएगी। सज्जाद ने हैरत से देखा, कहा कि ऐ दरोगा जिंदान, ये तू क्या कह रहा है, तुझे क्या कंप्लेन है? कहा मौला, जितना मेरी अथॉरिटी है मैं आप लोगों को लीनियंसी के साथ रख रहा हूं, लेकिन आपकी फैमिली की कोई औरत आधी रात को कैदखाने से बाहर सड़क पे बैठ जाती और सारी रात मातम करती है, अगर यजीद को यह पता चल गया तो यजीद तो मेरे सारी फैमिली को कत्ल कर देगा। सज्जाद ने कहा, एक बात बता, रोज आना शाम को जब सनसेट होता है और तू जाता है अपने हाथ से लॉक करके जाता है, जब सुबह को वापस आता है अपने हाथ से अनलॉक करता है इस कैद खाने को, क्या ये कैद खाना रात को खुला होता है? उसने कहा नहीं, ये तो लॉक होता है। कहा जब लॉक होता है तो इस कैद खाने से कोई बीबी बाहर कैसे जाएगी? कहा कि ये तो आपने सही कहा। मौला ने कहा, तुझे आखिर ये डाउट कैसे आया कि वो अमंग अवर सेल्फ कोई बीबी है जो बाहर जाती है? अजीब जवाब दिया। कहा कि शक मुझे इसलिए हुआ कि एक तो उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल वही है जो आपके घर आने की ड्रेसिंग, और दूसरी बात ये है कि उनके मातम भी वही है, कभी कहती है हाय मेरा हुसैन, कभी कहती है हाय मेरा अब्बास, कभी कहती है हाय मेरा अकबर, जो सारा दिन मैं आपकी फैमिली से मातम सुनता हूं वही आधी रात को वो कहती है। मौला ने कहा अच्छा, अब अगर वो बीबी नजर आए तो मुझे ले जाना। मौला वापस आए कैद खाने में, जैनब कुबरा सज्जाद की सबसे बड़ी जाहिरी प्रोटेक्टर, असर आशूर हुसैन ने सज्जाद को जैनब की कस्टडी में दिया तो जैनब घबरा गई। सज्जाद, ये इतनी देर तुझसे बात कर रहा था, क्या प्रॉब्लम है? कहा नहीं फूफी अम्मा, प्रॉब्लम नहीं है, ये बात। जैनब ने सुना, कहा कोई बीबी मेरे घर का मातम करती है? सज्जाद बेटा, अब अगर वो नजर आए तो मुझे भी ले जाना। उसी रात को मिडनाइट वो आया सुपरवाइजर या दरोगा, आने के बाद का मौला देखिए, आज भी वो सड़क के किनारे कैद खाने के बाहर वो बीबी बैठी है, चले मौला चले, लेकिन आवाज नहीं, फूफी अम्मा आइए, आपने कहा था ना चले मेरे साथ। مولا سجاد امام وقت ہیں، جانتے بھی ہیں کہ سب کیا ہے، اسی لیے باہر گئے، اس دراغہ کو ایک کونے میں بہت دور لے گئے۔ زینب آگے بڑھی، زینب نے دیکھا واقعا بات تو صحیح ہے، بالکل ہمارا جیسا آبا و لباس پہنے ایک بی بی زمین پہ بیٹھی ہیں اور وہی ماتم کر رہی، کبھی اصغر کو یاد کر رہی، کبھی اکبر کا ماتم کر رہی، کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا تذکرہ کر رہی، کبھی حسین کے پامال لاشے پہ آنسو بہا رہی۔ زینب آگے بڑھی، قریب آئیں، پہلا جملہ کہا کہ اے بی بی، پہلے تو میں علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، میرے گھر کا ماتم کسی نے نہیں کیا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لوٹے گھر کا ماتم کیا، اور پھر ایک سوال ہے، آپ ہیں کون؟ اپنا انٹروڈکشن تو کرا دیجئے۔ بس ایک مرتبہ نقاب کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ زینب، اگر میں اس گھر کا ماتم نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب نے کہا، بی بی آپ کی آواز سنی بھی لگ رہی ہے، آپ کی آواز پہچانی جا رہی ہے، یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی ہے۔ للہ، ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، کوئی نامحرم نہیں ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو اب جو بی بی نے ذرا سی نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میرے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی بھی ماتم کر رہی، اور کہہ رہی ہے، زینب بیٹی گھبرانا نہیں، میں کربلا سے کوفہ تیرے ساتھ گئی تھی، کوفے سے شام تیرے ساتھ آئی ہوں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے زینب کوئی تیرا ساتھ دے کے نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ ہو۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ شریکت الحسین ام المصائب زینب کبرا کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات اس وقت گریہ کر رہے ہیں، ان کے اس گریہ کا واسطہ، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، ماتم حسین۔